तफसीर सूरत अल-बकरा में आपने पहले जो आयात पढ़ी हैं, बार बार पहले भी पढ़ा ना कि यसअलूनका माज़ा युन्फिकून, है ना, कि कैसे खर्च करें, और आपने ज़कात के बारे में भी और इन्फाक के बारे में भी मोमिनीन की सिफात में से ये पढ़ा कि वो लोग जो हैं वो खर्च करते हैं। अगर हम जो है वो ज़कात को ही सिर्फ अगर देखें ना, तो कुरान मजीद में 82 मरतबा 82 मरतबा इसका ताकीदी हुक्म आया है। और ज़कात जो है ना सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ है, बल्कि इससे पहले भी तमाम उम्मतों पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ रही है। और जो लोग भी ज़कात अदा करें तो वही लोग जो हैं वो सच्चे मोमिन हैं। लेकिन अगर आप जो है वो कुरान की आयात को पढ़ें और कुरान को पढ़ें, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च किया जाता है, कभी तो अल्लाह ताला उसको इन्फाक कहते हैं, कभी उसको इत्आम कहते हैं, कभी सदका, कभी इताए ज़का। तो इस्तेमाल के मुताबिक, यानी जगह जगह इस्तेमाल जो करना है उसके लिहाज से उसको मुख्तलिफ नामों से जो है अल्लाह ताला उसको याद करते हैं। तो जब तीसरा पारा शुरू होता है तो साथ ही सूरत बकरा का आखिर भी शुरू हो जाता है तकरीबन, है ना। और सूरत अलग बकरा को अगर आप देखें तो इसकी आयत नंबर 254 में भी, तीसरे पारे में आपने ये पढ़ा था ना कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही हैं जो कुफर की रविश इख्तियार करते हैं। तो अब जो ये जो आयतें शुरू होंगी 261 से लेकर, तो यूं देखें तो तकरीबन 5 रुकू हैं। आगे जो मजीद अब चलेंगे 5 रुकू बाकी हैं आखिर तक, और इसमें आखिरी रुकू जो है सूरत बकरा का वो तो है उसूली चीजों का, ईमान के बारे में है, अकायद के बारे में है। लेकिन जो पहले 4 रुकू है ना 261 से लेकर 283 तक, तकरीबन जो है ये कुल 23 आयात बनती हैं, और ये सब की सब मालियात से मुतल्लिक है। इसमें खास हदायात हैं, इसमें खास इर्शादात हैं, ताकि अगर एक तरफ हमने दूसरे पारे में मुआशरती निजाम को पढ़ा और बड़ी तफसील से पढ़ा, कहीं कहीं हमें जो है वो मुआशी उसका भी जिक्र मिला कि इन्फाक करो, और अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि मुआशी निजाम को ठीक करना चाहते हो तो क्या करो, खर्च करो, ताकि दुनिया जो भटक रही है, और कुछ समझते हैं कि सरमायादारी निजाम बेहतर है, कुछ इश्तराकियत को समझते हैं, कुछ सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को, तो इन सारे निजामों का क्या है कि बहम टकरो हो रहा है, और नतीजा क्या निकल रहा है, कत्लो गारत है, जंग है, और दुनिया एक जहन्नुम है। तो अल्लाह ताला ने अब ये जो जितनी भी मालियाती आयात हैं अब जो तीसरे पारे में, इसमें मुआशी निजाम जो है उसके पहलू बताए हैं। इसमें एक पहलू तो ये बताया है कि जरूरत से जायद माल को अल्लाह की रजा के लिए हाजतमंद मुफलिस लोगों पर खर्च कर दिया जाए, तो उसको अल्लाह ताला ने सदका कहा। अल्लाह की रजा के लिए जो जायद माल है उसको हाजतमंदों को दे दे या मुफलिस लोगों को दे दे, जो भी जरूरतमंद है उनकी तालीम पर, उनके खाने पीने, जिस पर भी, तो ये सदका खैरात है। दूसरा साथ ही ये भी बताया कि सूद का जो लेन देन है ना वो हराम है, इससे बचना चाहिए। तो इसी तरह हमें ये भी बताया कि शराइत क्या है, अच्छे सदके की शराइत क्या है जिससे सदका कबूलियत का दर्जा पाता है और कई गुना अजर लाता है, और ये भी बताया कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि सदकात को, और जो नवाफिल हैं जो भी अच्छे काम किए जाते हैं उसको गैर मकबूल बना देती हैं या उसको फासिद कर देती हैं, ये भी अल्लाह ताला ने जो है वो बताया है। तो इस तरह मुख्तलिफ मजामीन जो हैं वो बयान हुए हैं। तो इससे पहले कि हम आयात पर बकायदा जाएं, आप ये देखें कि जब सहाबा के सामने इस तरह की आयात आती थी और इन्फाक की तरगीब और तलकीन जो थी वो की जाती थी, तो फिर उनका क्या हाल हो जाता था, क्योंकि ये फितरी सी बात है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को आजमाइश में डाला है, किसी को ज्यादा और किसी को थोड़ा, दोनों की आजमाइश है कि ज्यादा जिसके पास है वो उसको जरूरतमंदों को कितना देता है, और जिसके पास थोड़ा है वो उस पर कनात कितनी करता है और इज्जत से और सफेद पोशी के साथ अपनी जिंदगी को कैसे गुजारता है ना। तो दोनों का अल्लाह ताला जो है वो इम्तहान लेते हैं। अब आप देखें कि हमें इस सहाबा के इशार और कुर्बानी की बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें जो है वो एक दूसरे पर खर्च करते थे, और वो जो सहाबी जो मस्जिद नबी से भूखे मेहमान को ले गए थे और फिर आयतें नाजिल हो गई, वाकया आप पहले सुन चुकी हैं, उन सहाबी का नाम क्या था? हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हो। वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। तो कुरान में आयतें नाजिल हो गई। इसी तरह से जो है ये कि कई गुना अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर देता है, तो हमें ऐसी अहदीस भी मिलती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को बुझाता है और बुरी मौत से बचा लेता है। मुसनद अहमद ने इसको रवायत किया है। फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन सदका मोमिन पर साया बन जाएगा, इसको भी मुसनद अहमद ने रवायत किया है। फिर इसी तरह हमें एक और रवायत मिलती है कि सदका करने में जल्दी करो क्योंकि मसाइब सदका से आगे नहीं बढ़ते। जैसे मुसीबतें भी तेजी से इंसान की तरफ आती है ना, लेकिन जब अल्लाह पे खर्च किया जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, तो क्या है कि मुसीबतें आगे नहीं आती। फिर इसी तरह तिब्रानी की रवायत है कि सदका कयामत के दिन जहन्नुम से ढाल होगा। फिर इमाम मुस्लिम ने रवायत किया कि सदका करने से माल में कमी नहीं आती। ये तमाम अहदीस हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि खर्च करना अल्लाह के रास्ते में जो है वो क्या है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भूखे को खाना खिलाना भी है, उसको कपड़ा देना भी है, प्यासे को पानी पिलाना भी है, और मेहमान नवाजी करना भी है, और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना भी है, और अल्लाह के रास्ते में जो लोग काम कर रहे हैं जैसे मुख्तलिफ जमातें हैं, तहरीकें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, उसमें पैसे लगाना भी है। जैसे मसलन ये कुर्सियां जिस पर आप बैठी हैं, ये माइक जिसका इस्तेमाल हो रहा है, या ये वेबसाइट पे डल रहा है और बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो इसका भी अजर है। तो कुछ चीज है कि खाई और खत्म हो जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि वो यानी कई गुना आगे जाता है जितना जितना लोग उससे सीखते हैं और फायदा उठाते हैं। और उसमें ये कि अगर हमारे पास से एक पैनी भी उसमें लग जाती है, एक डॉलर भी, जितना भी लग जाए जो आपकी हैसियत है, तो आपके लिए सदका जारिया जो है वो बन जाता है। तो किसी चीज अजर तो सभी पे खर्च करने का, तो वक्त के लिहाज से, जरूरत के लिहाज से कभी किसी चीज पर खर्च करने का अजर जो है वो ज्यादा होता है। फिर इसी तरह से एक और अहम बात है कि सहाबा इकराम की, जैसे मैं आपके सामने मिसाल जो थी वो देना चाह रही थी कि कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक मरतबा कहत पड़ा। लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया कल तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरे रोज अल सुबह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के 1,000 ऊंट गले से लदे हुए मदीना पहुंचे। मदीने के ताजिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और जो गल्ला था उसको खरीदना चाहा ताकि बाजार में बेचा जा सके और लोगों की परेशानी दूर हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने ये गल्ला शाम से मंगाया है, तुम खरीद पर कितना नफा देते हो? ताजरों ने 10 के 12 पेश किए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे इससे ज्यादा मिलते हैं। ताजरों ने 10 के 14 पेश किए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे इससे भी ज्यादा मिलते हैं। उन्होंने पूछा, हमसे ज्यादा देने वाला कौन है? मदीना के ताजर तो हम ही हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे हर दिरहम के इवज 10 दिरहम मिलते हैं, क्या तुम इससे ज्यादा दे सकते हो? ताजरों ने कहा, नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ताजिरों गवाह रहना, मैं ये तमाम गल्ला मदीना के मोहताजों पर सदका करता हूं। देख ले, सारा सदका कर दिया ना। कहते हैं कि बोरियों के मुंह खोल दिए, जो ऊंटों पर लदा सामान आया कि गरीब लोग आए और लाद कर ले जाएं। एक दफा मस्जिद नबी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की, इन्फाक की ना, आपने जैसे लोग बैठे हुए होते हैं ना, दाएं तरफ रुख किया और कहा कि कौन अल्लाह के रास्ते में जो है ना वो देगा। कहते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ना उठे, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं। फिर जो है आपने सामने की तरफ रुख करके मुखातिब करके लोगों को कहा, तो आप इधर से भाग कर इस तरफ आ गए। फिर कहा कि मैं, फिर आपने इधर से रुक करके आप लेफ्ट साइड पर मुड़े, फिर आपने कहा कि कौन जो है वो दे इस तरफ, उधर से भागकर फिर इधर आ गए और कहा कि मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके संभल से इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि आसमान तू जो चाहे भी अब कर लेना। इस तरह के कुछ अल्फाज थे कि तुम्हें जन्नत से जाने से कोई चीज जो है वो रोक नहीं सकती ना। इसी तरह से हमें जो है वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह नो के बारे में मिलता है कि एक मरतबा 700 ऊंट दिमाग अल्लाह के सदका कर दिए, भरे हुए आए 700 ऊंट, एक ऊंट जहाज समझ ले, और सातों के सातों गल्ले से भरे हुए, सातों के सातों जो थे वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो दे दिए। तो कोई हमें ऐसा नहीं है कि एक मिसाल मिलती है और बेशुमार ऐसी हमें जो है वो मिसालें मिलती हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की तो और भी बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं कि मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे, मदीना गए तो आप जो थे वो मतलब अब जायरा के दामन झाड़ कर गए थे ना, कुछ भी पास नहीं था, और जिस अंसारी सहाबी के आपको साथ मौखात कायम की गई तो उनकी ना दो बीवियां थी। मैं अक्सर इस बात में वैसे सोचती हूँ ना, ऐसा दिल होता है कि उन सहाबी ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम जिसको चाहो मैं एक को तलाक दे दूं और तुम भी मतलब शादी कर लो ना। कहा कि नहीं, अल्लाह तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देना। यानी उनका ये कहना है कि दोनों में से जिसको तुम चाहो एक को मैं तलाक दे दूं। और फिर उन्होंने अपने जो भी बिजनेस था उसमें जब शामिल करना चाहा तो कहा कि नहीं है मेरे दोस्त, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और एक छोटे से टीम से खाली से किसी चीज से उन्होंने वो अपना कारोबार शुरू किया। और फिर कहते हैं इनके बारे में आता है, कहते थे खुदा की कसम मैं पत्थर को हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाती है। इतना अल्लाह ने इनको नवाजा था और इतना ही ज्यादा जो था ये अल्लाह के रास्ते में जो थे ये दिया करते थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अनहो। तो हमें कोई एक मिसाल नहीं मिलती, मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन फिर बात वही है कि मैं कहाँ हूं और आप कहाँ हैं। इन आयात के अंदर अपने अमलों के अक्स भी तो ढूंढने चाहिए ना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत का सबस रेशम पहनाएगा, जो शख्स किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, जो शख्स किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में उम्दा शराब पिलाएगा। मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाही कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिय्यतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालें निकली और हर बाल में 100 दाने हों, इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता करता है, जिसके अमल को चाहता है उसका अजर बढ़ा कर देता है, वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। यहां से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला खास तौर पर अहले ईमान को जो है वो इन्फाक पर उभार रहे हैं, इन्फाक की उनको तरगीब जो है वो दिलाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मिसाल उन लोगों की युन्फिकून अमवालहुम जो अपने माल खर्च करते हैं। तो यहां पर जो खास बात है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो खर्च करते हैं अपने मालों को फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तो पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि अहले ईमान जो कि अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जो आखरत पर और जो कुरान पर और जो अंबिया पर, तो ईमान लाने के साथ ही अल्लाह ताला क्या बात कहते हैं कि इन अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह ताला ने बेशक मोमिनीन से उनके जान और उनकी माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। तो ये सूरह तौबा में है। तो ना जान हमारी ना माल हमारा, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और अब उनको फिर क्या करना है कि अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। यहां शर्त है فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی. تو جو خاص چیز جس کی یہاں پہ شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے فی سبیل اللہ. اس کے تحت وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے کوئی کام اہم ہو، زیادہ اہمیت والا، اور کوئی کام جو ہے وہ کم اہم ہو، لیکن ہونا وہ چاہیے رب کی رضا کے لیے، وہ کام ہونا رضائے الہی کے لیے، اور شریعت کی ہدایات کے مطابق ہو تو وہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اور وہ کام جو ہے وہ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہو، یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہو، یا پھر اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کی خبر گیری کے لیے خرچ کیا جائے، یا پھر محتاجوں کی مدد کے لیے، یا رفاہ عامہ میں ہوتے ہیں خدمت کے بہت سے کام، اس کے لیے خرچ کیا جائے، یا اشاعت دین کے لیے، یا جہاد کے مقاصد پر، اور کسی مسجد کے لیے، اور کسی بھی طرح جو اچھے نیکی کے کام ہیں جب اس کے لیے ہم خرچ کریں گے، اور اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص رب کی رضا کے لیے ہو تو وہ ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اور جو بھی اس طرح خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیسے قبولیت دیتا ہوں. کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابلہ، کہ اس سے 7 بالیں نکلیں. اس دن آپ کو بورڈ پر بھی بنا کر دکھایا تھا نا کہ جیسے ایک گندم ہے اس کا ایک خوشہ ہے، اور اسی طرح جو ہے جو کا ایک خوشہ ہے، تو اس کے اندر جو بالیں ہیں، اور ہر بال کے اندر جو ہے وہ مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ 100 دانے ہوں. تو دراصل یہاں پہ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ اس کے اندر 100 دانے ہوں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گن کر ہی اس کے اندر جو ہے وہ 100 دانے نکلے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 دانے تک ہو سکتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو یہ مثال دینا جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ دانوں کا فرق کس چیز پر ہوگا، دانے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ یہ اس چیز پر ہوگا کہ آپ کا وہ جو 1 ڈالر جو آپ خرچ کر رہے ہیں، یا 1 پینی، یا 100 ڈالر، جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کے اندر نیت کیسی ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اتنے ہی زیادہ جو ہے نا وہ اجر کا مستحق ہوگا. اللہ جو 1 ڈالر بھی اگر حسنِ نیت کے ساتھ اور گہرے اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اللہ ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ جتنی کہ اس سے 700 دانے پیدا ہو جائیں. اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ہماری خیرات کو اس طرح جو ہے وہ نشو نما دے کہ 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک جو ہے وہ ہو کر اللہ کی طرف سے انسان کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹ کر آئے. تو اصل چیز کیا ہے کہ کمثل حبۃ، یہاں پہ تو حبہ دانے کی مثال ہے، مراد کیا ہے کہ وہ ڈالر جو ہے وہ جو بھی تم چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، وہ 1 ڈالر ہو سکتا ہے، وہ ایک کپڑا ہو سکتا ہے، وہ ایک کتاب ہو سکتی ہے جو تم کسی کو دیتے ہو جو ضرورت مند ہے، وہ کسی کو 1 گلاس پانی کا جو تم پلاتے ہو، یا کسی کو تم ایک گھر کا کرایہ دے دیتے ہو، کسی کے کی تم جو کفالت کرتے ہو، کچھ بھی جو اللہ کے راستے میں تم کرتے ہو، اصل چیز اہم نمبر 1 کیا ہے اس کے اندر کہ تمہاری نیت کیا ہے. کہ نیت جو ہے نا وہ دانہ ہے. دراصل دانہ جب قوی ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو کیڑوں نے کھایا نہیں ہوتا، تو فصل اچھی نکلتی ہے نا. تو اگر جو ہے وہ کسان کرتا تو بڑی محنت ہے، لیکن دانا ہی غلط ہے، دانا ہی خراب ہے، تو کیا ہے کہ پھل نہیں آتا، دانا ہی زمین کے اندر رہ جاتا ہے، فصل ہی گلی سڑی خراب نکلتی ہے. تو دانا جو ہے وہ دراصل وہ خرچ کرنے والے کی جو ہے وہ نیت ہے. تو جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی وہ جو دانا ہے، وہ جو ڈالر ہے، وہ صدقے کا جو ڈالر ہے، خیرات کا جو ڈالر ہے، وہ سب پھل لائے گا. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ये चीज भी आती है कि वो दाना हलाल का होना चाहिए, यानी दाना जो है ऐसे नहीं हो कि बस हमने जो है वो उसको खर्च कर दिया, बल्कि क्या है कि ऐसा सदका जो कबूलियत पाता है उसकी शराइत में से क्या है कि दाना जो है वो उमदा भी हो, खराब भी हो, खराब ना हो, यानी नीयत ठीक हो, और उसके साथ साथ ये भी हो कि वो दाना जो है हलाल कमाई में से हो, हराम का सदका भी अल्लाह कबूल नहीं करता। फिर दूसरी अहम बात क्या है जो यहाँ पर हमें समझ में आती है कि जब खर्च किया जाए तो जैसे खर्च करते वक्त ना ये ख्याल रखना चाहिए कि इंसान कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे उसका वो दाना जाया हो जाए। जैसे किसान जब दाना जमीन में डालता है तो क्या करता है, कीड़ों मकोड़ों से भी तो उसकी बचत करता है ना, वो उसको पानी भी देता है ना खेत को, और अगर वो ऐसा ना करे तो फिर क्या है कि वो फल नहीं आएगा ना, आबियारी नहीं करता, गोडी नहीं करता, और कांट झंकार उसमें से निकालता नहीं है तो भी दाना जो है वो जाया हो जाता है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि जिस तरह किसान जो है वो काश्तकारी के फन में माहिर होता है तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसे फसल लेता है, बिल्कुल इसी तरह खर्च करने वाला जो है उसको भी ये ख्याल करना चाहिए कि कोई ऐसी हरकतें ना करे कि जिससे उसका जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है ना वो जाया हो जाए, या यानी एहसान जताकर, दुख देकर, किसी भी तरह। फिर इसमें तीसरी बात ये भी आती है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान ऐसा नहीं होता कि जो है ना वो लापरवाह हो जाए, बल्कि वो क्या करता है कि वो और ज्यादा हिफाजत करता है कि अब फसल जो है वो पक गई है और अब इसको घर लाने का वक्त है, ये कहीं जाया ना हो जाए। तो इससे ये बात भी समझ में आती है कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए तो खर्च करके ऐसा ना हो कि फिर इंसान उसको भूले ही ना, हर वक्त उसका तذکرہ करना और हर वक्त उसके एहसानात जताना और हर वक्त जो है जिनको दिया है उनके सर पर सवार रहना, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कर भी दिया तो अब वो जो है वो जाया ना हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो अहम है, और ये बात भी हमें हदीस से पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सिर्फ पाक माल कबूल करता है, तो जिसने अपने पाक माल में से एक खजूर बराबर सदका किया अल्लाह ताला उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसकी यूं नशोनुमा करता है जैसे तुम अपने बछड़े की नशोनुमा करते हो, हत्ता कि वो खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है। बुखारी की रवायत है, एक खजूर पहाड़ के बराबर हो गई, और इमाम मुस्लिम ने भी जो है वो रवायत किया है। तो असल चीज क्या है, कुल बात का निचोड़ क्या है कि जितना ज्यादा अजरो सवाब चाहिए तो उतना ही ज्यादा इखलास से नियत होना चाहिए और उतना ही ज्यादा उसको सही तरीके से खर्च करना चाहिए, और यहां तक कि $1 700 गुना तक जो है वो अजर पा सकता है। फिर फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है दुगना कर देता है। तो लिमन यशा, जो खुद चाहता है तो अल्लाह भी उसके लिए चाहता है, ये बात बहुत अहम है। जो खुद ही ना चाहे, जो खर्च ही ना करे और जो सही तरीके से ही ना करे तो अल्लाह फिर उसको दुगना चुगना जो है वो नहीं करता। वल्लाह वासिउन अलीम, वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। तो इससे ये बात पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह का हाथ जो है वो तंग है इसलिए अल्लाह ताला जो है वो आम लोगों को कह रहे हैं कि तुम खर्च करो, बल्कि क्या है कि अल्लाह तो है ही वासेउन, अल्लाह ताला जो है वो तो फराख दस्त है, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम खर्च करो और फिर अल्लाह उसको कई गुना जो है ना बढ़ा ना सके। अल्लाह ताला के अंदर ये अल्लाह की ये सिफात हैं कि वो जो भी नेकी करने वाला है उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर जो है वो वापिस करे, और वो तो छोटी बड़ी और खुफिया और जाहिरी जो भी नेकी होती है, जो हर तरह की नेकी से अल्लाह ताला वाकिफ है, वो अलीम है, और हर शख्स इस बात पर मुतमिन रहे कि जब वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो वल्लाहु वासिउन अलीम, एक तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा और दूसरा ये कि वो अलीम है, उसके पास इल्म है, अल्लाह ताला को पता है कि किसने कब किन हालात में किस मुश्किल के साथ अपने पेट को काटकर अपने बच्चों की जरूरियात को जो है वो कम करके जो है वो ये खर्च किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जानता भी हूँ, मेरे पास इल्म भी है, और मैं बहुत ज्यादा जो है वो نوازنے والا بھی ہوں. یوں اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں بھی تو یہی بات کہتے ہیں نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون خرچ کر رہا ہے, تھوڑا کر رہا ہے, زیادہ کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا قدردان بھی ہوں اور میں اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ خرچ واپس کر سکتا ہوں. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, رہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ, یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے, کیونکہ عام طور پہ جو پیسے, جو روپیہ, جو بھی نیکی کے کام کیے جاتے ہیں, انسان جب اس کو خرچ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ عام طور پہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مانیں, چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اس کا مرتبہ اور مقام مل جائے, وہ چاہتا ہے اس کی تصویریں بنیں, وہ چاہتا ہے اس کی ویڈیو آئے, وہ چاہتا ہے اس کا ٹی وی پر نام آئے, اخبارات میں اس کا نام آئے, لوگ واہ واہ کہیں, لوگ اس کو سخی اور داتا کہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسان کو اس قسم کی تمام جو احساسات یا جذبات ہیں نا, ان سے بے نیاز کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے نا. پھر انسان کو اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی شاباش دے رہا ہے کہ نہیں, کوئی واہ واہ کر رہا ہے کہ نہیں, کوئی جو ہے اس کو مان رہا ہے کہ نہیں, جس پر خرچ کیا ہے پھر وہ اس کا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا, پھر جو ہے وہ جب خرچ کر دیتے ہیں تو پھر احسان نہیں جتاتے, منن ولا اذن, نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تو دکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر خاص طور پر جو ہے دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جذبہ انفاق رکھنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو ہیں وہ یہ جب خرچ کر دیتے ہیں تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, اور وہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ احسان نہیں جتاتے. کیونکہ انسان جو ہے جب احسان جتاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور احسان وہ لوگ جتاتے ہیں جن کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, کہ جو ہی خرچ کیا فوراً اس کا جو ہے نا وہ بدلہ چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس پر خرچ کیا ہے اب وہ زندگی بھر ان کا زر خرید غلام بن کر رہے, ان کے ممنون احسان رہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس پر جو خرچ کیا ہے یہ میرے اس احسان کو مانتا نہیں ہے اور مجھے کوئی اس کا بدلہ نہیں دے رہا یا کوئی شاباش نہیں دے رہا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ولا اذن, تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ کاٹ دیا ہے, کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم احسان جتانے لگو اور اگر تمہارا احسان جو ہے وہ کوئی مانتا نہیں ہے تو تم جو ہے وہ پھر یہ چاہو کہ تنگ کرنا شروع کر دو, تانے دے رہے ہو, توہین کر رہے ہو, جذباتی یا روحانی یا جسمانی طور پر جس پر تم نے خرچ کیا ہے اس کو تم اذیت پہنچا رہے ہو. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. اصل چیز کیا ہے, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر جو ہے دراصل وہ تو ان کے رب کے پاس ہے. تو جس چیز کی تمہیں فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ تم جن پر تم نے خرچ کیا ہے ان سے احسان کیوں ان پر جتاتے ہو, یا ان کو دکھ اور تکلیف کیوں دیتے ہو, اور ان کو اپنا زر خرید غلام کیوں بناتے ہو, ان کو اپنے گھر کی باندی کیوں بناتے ہو. اللہ کے پاس جو ہے نا تمہارا اجر ہے جو کچھ بھی تم کام جو ہے وہ کرو گے. تو یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اجر جو ہے وہ کس سے لینا ہے, اللہ تعالیٰ سے لینا ہے نا. تو لیکن انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی جب جس پر خرچ کرتا ہے نا اور اس کے رویے میں کوئی کمی بیشی دیکھتا ہے, اس کے معاملات میں کوئی کمی بیشی دیکھتا ہے, تو کیا کرتا ہے کہ فوراً اس کا رویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہمیں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بھی ملتی ہے, اور یہ مثال جو ہے یہ غزوہ تبوک کی ہے. غزوہ تبوک میں جو ہے وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ خرچ کیا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, اور اس موقع پر کیا تھا کہ کچھ لوگ اپنا پورا مال لے کر آئے تھے, اور کچھ تھا ایک صحابی ایسے بھی تھے نا کہ उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो अल्लाह के रास्ते में देते, तो उन्होंने रात भर एक यहूदी के यहाँ कुआं चलाया और फिर जो है वो सुबह लाकर वो जो चंद खजूरें मुआवजे में तनख्वाह के तौर पर यहूदी ने दी वो लाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को लेकर पूरे जो माल गनीमत का माल आया था ना उसके ऊपर डाल दिया कि ये सब पर ज्यादा जो है ना अहमियत रखती है। तो क्यों, अब उन्होंने बेशक थोड़ा सा दिया लेकिन उनको ये बात पता थी उन सहाबी को भी कि इसका अजर जो है वो क्या, यानी मुझे किससे लेना है, अल्लाह ताला से लेना है। और जब इंसान को जो है इस बात का एहसास हो कि अजर जो है वो अल्लाह से लेना है तो फिर इंसान जो है वो ऐसे मामलात नहीं करता। इसी तरह हमें एक बड़ी खूबसूरत इसकी मिसाल मिलती है और मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि हम भी जब नेकियां करते हैं तो दिल हमारे बहुत छोटे हो जाते हैं। तो हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की भी आजमाइश हुई वाकया इफ्क में। उनकी आजमाइश जो थी वो कैसे हुई कि मिस्का बिन उसासा रजी अल्लाह अन्हु, मिस्का बिन उसासा वो सहाबी थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदारों में से थे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इनकी और इनके खानदान की कफालत किया करते थे। और जब अब्दुल्ला बिन उबई ने जो रासुल मुनाफिकीन है मुनाफिकों का सरदार, इसने जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर इल्जाम लगाया तो जो ये सहाबी थे हजरत मिस्का ये भी इसमें शामिल हो गए इल्जाम लगाने वालों में। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो पहले तो कफालत किया करते थे, जब आपको पता चला कि इन्होंने इल्जाम लगाया है और इसमें ये भी शामिल है, आपको बहुत दुख हुआ कि हम तो इनकी माली मदद करते थे और उन्होंने ये मतलब ये किया है, तो आपने ना कसम खा ली कि अब हम इस खानदान की मदद नहीं करेंगे। कुरान में आयतें नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने फरमाया वला यातली उलुल फदली मिनकुम, वला यातली उलुल फदली मिनकुम वस्साति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरत तौबा, सूरत नूर की आयत नंबर 220 ये नाजिल हो गई। और के अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम में से जो लोग साहिब फजल हैं, अल्लाह ने जिनको फजल से नवाजा है और कशाइश वाले हैं, कि वो ये कसम ना खा लें कि वो रिश्तेदारों की और मिस्कीनों की और मुहाजरीन की अल्लाह के रास्ते में मदद ना करेंगे। उनको चाहिए कि उनको उनसे अफ़ो दरगुजर करें, यानी उनको माफ कर दें। क्या वो पसंद नहीं करते कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे? अल्लाह तो हिब्बुना यग़फिर अल्लाहु लकुम। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने जब ये आयत आई तो उन्होंने फौरन कहा कि मैं हम मोहब्बत करते हैं इस बात से कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और उन्होंने पहले से भी बढ़कर जो है ना उस खानदान की कफालत करनी शुरू कर दी, पहले से भी ज्यादा। तो इससे ये बात पता चलती है कि दरअसल अजर जो है वो लोगों से नहीं लेना बल्कि अल्लाह से लेना है। और जो लोग ये मामला रखते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर जो है ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ है और ना ही गम है। तो ये आयत जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरत नूर की, आपने कौन सी आयत नंबर लिखा है? 22। हाँ, असल में वो पढ़ा नहीं जा रहा था तो इसलिए दो दफा निकल गया 2, यानी 222 मुराद नहीं है बल्कि 22, आयत नंबर 22 है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि फिर ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। कौलुम मारूफुन, एक मीठा बोल, एक अच्छी बात, व मग़फ़िरतुन, और चश्म पोशी करना, खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। तो यहाँ पर जो है एक और बात पता चल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात बता रहे हैं कि एक अच्छी बात करना और दरगुजर करना ऐसे सदके से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा दी जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया हर मुसलमान को सदका देना जरूरी है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो? आपने फरमाया वो हाथ से मेहनत करे, खुद भी फायदा उठाए और खैरात भी करे। सहाबा रजी अल्लाह ने पूछा अगर ये भी ना हो सके? फरमाया अच्छी बात पर अमल करे और बुरी से परहेज करे, इसके लिए ये भी सदका है। फिर इसी तरह एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, खा खजूर का एक टुकड़ा सदका करने से ही क्यों ना हो। मतलब एक खजूर ही तुम सदका क्यों ना करो, तुम आग से बचो। मतलब बिशक की तमारा, बुखारी की रवायत है। फिर इसी तरह जो है वो एक मौके पर आपने फरमाया कि जो है वो अपने भाई के लिए जो है वो मुस्कुराना भी सदका है, यानी एक स्माइल किसी को दे दें तो ये भी सदका है। एक आदमी ने आपसे पूछा कौन सा सदका अजर के लिहाज से बड़ा है, फरमाया जो रमजान में दिया जाए, ये तिर्मिजी की रवायत है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह से पूछा कौन सा सदका अफजल है, फरमाया तंगदस्त जो अपनी मेहनत से सदका करे और इनसे इब्तदा कर जो तेरे जेरे कफालत हैं, यानी जो तेरी जिम्मेदारी में है, तेरे बीवी बच्चे, तेरे माँ बाप बहन भाई, जो भी इंसान की जिम्मेदारी में है, ये भी जो है अबू दाऊद की रवायत है। तो ये सारी चीजें जो हमें बताती हैं वो क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान ये करता है कि सदका तो करता है, लेकिन सदका करने के साथ साथ एहसान जताता है, दुख देता है और परेशान करता है, तो ये चीज भी जो है वो बेहतर नहीं है। दूसरी बात जो पता चलती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान सदका तो करना चाहता है लेकिन उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो सदका कर सके, तो अब वो क्या करे। क्योंकि कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ऐसे भी थे कि जिनकी हैसियत ही नहीं थी, तो उनके लिए भी ये बात जो है उनके सामने लाई गई कि असल चीज तो क्या है कि तुम अगर सदका ना भी कर सको तो भी अच्छी बात करो, और अच्छी बात करो तो ये क्या है कि उस सदके से बेहतर है जिसमें तुम किसी को तकलीफ देते हो सदका करने के बाद। तीसरी बात जो यहां से पता चलती है इसी आयत से, इससे ये भी है कि सदका खैरात जो अल्लाह के नजदीक कबूलियत पाता है, तो जरूरी है कि वो करने के बाद कोई ऐसे जुमले न बोले जाएं कि जिससे जिस पर सदका किया है, जिसको अल्लाह के रास्ते में दिया है, तो उसका दिल खराब हो। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले भी कह दिया कि मा अनफकू मन वला अजन, कि वो ना एहसान करते हैं और ना ही जो है वो दुख देते हैं। और उसके साथ ही जो बात पता चलती है वो क्या है कि जिस पर आप खैरात कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, उसके साथ कोई आपका रवैया, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो जिल्लत अपनी महसूस करें या उनको हकारत महसूस हो या उनको इससे जो है वो तकलीफ जो है वो महसूस हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला कयामत के दिन कलाम नहीं करेगा और ना इनकी तरफ नजरे रहमत करेगा और ना ही इनको पाक करेगा। एक मन्नान, मन्नान मन से मन्नान एहसान जताने वाला, दूसरा तहमत नीचे लटकाने वाला, और तीसरा झूठी कसम खा के अपना माल फरोख्त करने वाला। इमाम मुस्लिम ने इसको जो है वो रवायत किया है। तो यहां से उसूल क्या मिला कि दिलदारी का एक कलमा उस खैरात से बेहतर है जिसके साथ दिल अजारी हो। तो अच्छी बात क्या है कि इंसान जो है वो अल्लाह के रास्ते में दे, और साथ ही देने के साथ साथ उसका रवैया अच्छा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि आप घर में भी या कहीं भी किसी की जो कोई खिदमत करते हैं, तो जैसे बंदा जोर से जाके दे मारा कि लो भाई, है ना, तो बाज़ूकात मुंह से कुछ नहीं बोला बट ऐसे पटका कि अगले को पता चल गया कि इसका रवैया जो है ना ठीक नहीं है, है ना। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं देखते कि हम क्या दे रहे हैं। बाज़ूकात घरों में बुजुर्ग बूढ़े बीमार होते हैं ना, तो खिदमत करने वाले बाज़ूकात उकता जाते हैं, तो फिर पटख के रखा, तो वो आपके देने को नहीं देखता जो ले रहा होता है, वो आपके पटखने को देखता है, आपके गुस्से की कैफियत को, आपके झुंझलाने को, झुंझलाहट को। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इंफाक के साथ साथ हमारी जो झुंझलाहटें हैं ना उनको दूर करना चाहते हैं। मिसाल असल बात ये है, समझ आई बात की? वल्लाहु गनीउन हलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो गनी है और हलीम है, तो बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफत है। तो यहाँ पे अल्लाह के लिए गनी का लफ्ज आना, इसका मतलब ये है कि दरअसल अल्लाह तुम्हारी खैरात का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला खुद भी ये पसंद करता है कि वो लोग अल्लाह को पसंद हैं जो उसके रास्ते में दिल खोल कर देते हैं, जो कम जर्फ ना हो, जो बुर्दबार हो, जो आली हौसला हो। तो अल्लाह ताला का भी तो आप देखें ना कि इंसान कितने कसूर करता है, कितनी गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह ताला का जो बेहिसाब फिजान है मुसलसल एक समंदर की तरह बह रहा है ना, बारिश अल्लाह की रहमतों की होती रहती है। और फिर अल्लाह क्यों कर पसंद करता है ऐसे लोगों को जो किसी गरीब को एक रोटी खिला दें तो एहसान जता जता कर उसकी इज्जत नफ्स को खाक से मिला दें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, इसीलिए कयामत के दिन ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा, ना उनसे कलाम करेगा। जो देते हैं, जो नेकियां करते हैं, फिर एहसान जताते रहते हैं। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, ए ईमान लाने वालों, अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो। अब फिर दोबारा उसी चीज को कहा जा रहा है कि नेकी भी कर रहे हो, अच्छे काम भी कर रहे हो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम नेकी करके जो है फिर उसको खाक में मिला दो। किस शख्स की तरह? कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिया अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उस शख्स की तरह जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। तो उस शख्स की तरह ना हो जाओ कि दिखाने के लिए खर्च करना, रिया, दिखावा। तो ये जो रिया है, ये दिखावा है, ये अल्लाह को बड़ा ही सख्त जो है वो नापसंद है। और हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें जो है वो सहाबा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये चाहते थे कि वो इस तरह छुपा कर करें कि दूसरे को पता भी ना चले। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे हजरत जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन अली रजी अल्लाह अन्हु के हालात में लिखा है कि मदीना मुनवरा में बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनकी मुआश का कोई जाहिरी वसीला नजर ना आता था। जब इमाम जैनुल आबिदीन अली रजी अल्लाह अन्हु वफात पा गए तो पता चला कि आप खुफिया तौर पर 100 घरानों की कफालत करते थे। आप अपनी खैरात को लोगों से छुपाने की खातिर रातों को खुद मोहताजों के घरों में जा जाकर माली इमदाद पहुंचा कर आते थे। वफात के बाद जब आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो जिस्म मुबारक पर नील के निशान नजर आए। तहकीकात से पता चला कि रात की तारीकी में जो गल्ले के बड़े बड़े बोरे अपनी पीठ पर लाद कर गरीबों के घर में पहुंचाते थे, जब आपके पास कोई साइल आता तो फरमाते, मेरे तोशे को आखरत की तरफ ले जाने वाले, आ खुश आमदीद। आप फरमाते थे, खैरात साइल के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में चली जाती है। जब आपने वफात पाई तो अहले मदीना कहते थे, खुफिया खैरात जैनुल आबदीन के दम से थी। तो रजी अल्लाह अन्हो, तो आप देख लीजिए कि ये लोग जो हैं वो दिखावे से जो थे वो कितने बेनियाज थे और कितना बच बच कर करते थे कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, वरना जो है वो किसी नौकर चाकर से भी भिजवा देते, तो रात की तारीकी में जाकर गरीबों के घर में देते थे। और जो लोग दिखावा करते हैं, जो रिया करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, वला यूमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर, ना तो आखरत पर उनका ईमान है और ना ही अल्लाह पर। अगर अल्लाह पर ईमान होता तो वो लोगों से क्यों शाबाश चाहते? अल्लाह तो खुद शाबाश देता है। अल्लाह ताला तो कहते हैं, मैं तो 700 गुना देता हूं। और अल्लाह तो गनी है, अल्लाह हलीम है, वासिउन अलीम है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा बढ़कर देने वाला है। फिर दूसरी यहां बात क्या है कि वो आखरत पर भी ईमान नहीं रखते। अगर उनका आखरत पर ईमान होता और दुनिया में जो है वो अगर उनको कोई शाबाश ना भी देता, कोई उनको थपकी ना भी देता, कोई सखी और दाता ना भी कहता, तो आखरत में ही सब अजर मिलने वाला था। तो क्यों उनका दिल छोटा हो गया, क्यों परेशान हो गए? फिर फरमाया, फिर इसकी पहले तो ऐसे शख्स की ये बताया कि रयाकार की मिसाल है। फिर रयाकार वो होता है जो आखरत पर और अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। और फिर मिसाल दी, फमसा लहू कमसले सफवान अलैही तुराबुन, फिर जो है इसके खर्च की मिसाल ऐसी है। पहले तो वो आदमी की मिसाल दी ना कि वो कैसा आदमी है, अब उसका खर्च कैसा है। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक चट्टान थी, सफवान अलैही तुराबुन, उस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। फअसाबहु वाबिलुन, फिर उस पर जोर की बारिश आई। फतरकहु सलदा, फिर जो है वो सारी मट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान जो है वो रह गई। इस मिसाल में बारिश से मुराद वो खैरात है कि जिसमें जो है वो नीयत और जज्बे में खराबी होती है, और नीयत और जज्बे से मुराद यानी उसकी खराबी से मुराद चट्टान है, क्योंकि मिट्टी की हल्की सी तह उस चट्टान पर आकर जम जाती है और ये नेकी की जाहिरी शक्ल है कि जिसके नीचे नीयत की खराबी जो है वो छुपी हुई होती है। तो अब आपको समझ आ सकती है इस मिसाल से कि जब असल मिट्टी नहीं होती तो क्या होता है कि बारिश जब आती है तो सफवान यानी उस बड़ी चट्टान पर जो मिट्टी होती है वो क्या होता है कि बह जाती है, और अगर असल मिट्टी होती तो वो जरखेज खूब फल लाती, दुगना फल लाती, उकुलुहा दैफेन दुगना फल लाती। लेकिन अब यहां पे फल आ नहीं सकता क्योंकि मिट्टी तो बह गई और रह गई चट्टान। अब क्या हुआ, ला यक़दिरूना अला शैइ मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो है समझते हैं ना नेकी कमाई है, तो इससे कुछ भी उनके हाथ जो है वो नहीं आता। मिम्मा कसबू, जो कुछ भी उन्होंने कमाई की है इससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप ये बात भी देख लें, क्योंकि रियाकार की नीयत ही ठीक नहीं है, और जब नीयत की मिसाल बीज जैसी है, जब बीज ही गलत होगा तो फिर क्या होगा कि उससे कुछ निकल ही नहीं सकता। और दूसरी बात यहाँ पर जो बताई गई कि साफ और चकना पत्थर जो होता है उस पर थोड़ी सी भी मिट्टी हो और किसान उस पर अपना बीज जब डालता है तो अब होना क्या चाहिए था कि बारिश होती तो उससे फल आता, लेकिन बारिश हुई मिट्टी ही बहा कर ले गई। अब बारिश के साथ ही जब मिट्टी गई तो बीज भी चला गया, जब बीज चला गया तो अब पैदावार कहां से हो। तो वो लोग जो अल्लाह और आखरत पर ईमान ही नहीं लाते, वो लोगों को खुश करने के लिए अमल करते हैं, अब अल्लाह के यहाँ उनको अजर सवाब की ना तो उनकी नीयत थी, अब ना ही अल्लाह और के यहाँ उनको आखरत में कुछ मिलेगा। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, कसब यानी उनके अमाल हैं, उनकी जो है वो कमाई है, और यहाँ पे इससे मुराद ये है कि बज़ाहिर तो उन्होंने नेकी की है लेकिन अल्लाह के यहाँ अब इनको जो है वो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बड़े ना ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत ही अच्छी नहीं है कि एक मेहनत भी की, एक काम भी किया, ये थके भी, लेकिन सारी खैरात जो है वो जाया हो गई, अब इनके पल्ले जो है वो कुछ भी नहीं पड़ा। इसकी आपको वो मशहूर हदीस जो इखलास नियत के बारे में आपने कई दफा सुनी है कि जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कयामत के दिन एक शख्स को बुलाएगा, फिर अपनी नेमतें जिताएगा, फिर वो एतराफ करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा तुमने ये अमल क्यों किया, जैसे मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसमें से एक शख्स वो जो के लड़ा यहां तक के शहीद हो गया, अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ कहते हो, तुम तो इसलिए लड़ते थे कि लोग तुझे जो है बहादुर कहें और दुनिया में तुम वो कहलवाए जा चुके। फिर जो है वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जहन्नुम के फल घसीटते हुए जो है ना वो डाल दिया जाए। फिर इसी तरह जो है एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने दीन का इल्म सीखा सिखाया और फिर वो कुरान पढ़ता था, अल्लाह उस पर भी अपनी नियमतें जितलाएगा, फिर वो एक एक का एतराफ करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा तूने ये अमल क्यों किया, वो भी कहेगा कि अल्लाह तेरे लिए, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं तू तो इसलिए ये किया था कि लोग तुझे आलिम कहें और लोग तुझे कारी कहें। अब दुनिया में आलिम कारी कहा जा चुका, उसको भी कहा जाएगा कि इसके माथे के बालों के बल घसीटते हुए इसको जहन्नुम में जो है ना वो डाल दिया जाए। तो आप देख लीजिए कि इसी तरह फिर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके पास हर किस्म का माल था, फिर अल्लाह उस पर भी अपनी नेमतें जतलाएगा, वो एतराफ करेगा, फिर पूछेगा अल्लाह ताला तूने क्यों ये सब किया, तो वो कहेगा कि अल्लाह तेरे लिए, तेरी राह में खर्च किया था क्योंकि तू पसंद करता था। अल्लाह फरमाएगा झूठ कहते हो, तुम तो इसलिए खर्च करते थे कि लोग तुम्हें सखी कहें और वो दुनिया में तुम्हें कहा जा चुका। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे घसीटते हुए जहन्नुम में फेंक दो। तो ये सब चीजें हमें क्या बताती हैं, ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफिरीन, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। वैसे तो काफिर है ना जो इनकार करे तौहीद का आखिरत का, लेकिन यहाँ पे काफिर नशुकरे के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसे शख्स के लिए जो मुनकरे नेमत हो, अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की राह में उसकी रजा पर खर्च करने के बजाय इंसानों की खुशनुदी के लिए खर्च करे। तो जो भी वो अगर ऐसा करेगा गो कि वो मुश्किल से करेगा, लेकिन क्या है कि चूंकि उसने अल्लाह की रजा के लिए खर्च नहीं किया, तो ये दरअसल ना शुक्र है, अल्लाह का एहसान फरामोश है। और जब वो खुद ही अल्लाह की रजा से गाफिल है, फिर अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि ऐसे लोगों को खामखा अपनी रजा का रास्ता दिखाए, अपनी हदायत का रास्ता दिखाए। फिर दूसरे शख्स की मिसाल बयान हुई है, वमसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह, और मिसाल उन लोगों की जो अपने माल महज अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, व तस्दीतम मिन अनफुसिहिम, और दिल के पूरे जमाव के साथ, करार के साथ, और वो दिल पूरी दिल जमई के साथ अपना माल खर्च करते हैं। अब यहां पर जो माल अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं और पूरी दिल जमई के साथ खर्च करते हैं, ये ऐसे शख्स के बारे में कहा जा रहा है जो अल्लाह को पसंद है। ऐसा शख्स जो माल खर्च करता है, तो उसको पता है कि माल जो है वो कौन सा माल कबूलियत का दर्जा पाएगा, तो कौन सा माल जो है और किस तरह का माल जो है वो खर्च करना चाहिए। तो उसके अंदर ये दो सिफात हैं, एक है मर्दातिल्ला, दूसरी है तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, कि दिल के पूरे करार के साथ जो है वो खर्च करता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कैसे हैं, कमसाले जन्नतिन बिरवतिन, उनके खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी का बाग हो एक टीले पर, सतह मुर्तफा पर, एक ऊंचाई पर किसी का बाग हो, असाबहा वाबिलुन, उसको बारिश जोर की मिली, फआतत उकुलहा दैफईन, तो पस वो दुगना फल लाए, कि बारिश जोर की आई तो फल दुगना आए, इल्लम युसिबहा, और अगर जोर की बारिश ना भी आए, वाबिलुन फतल, तो एक हल्की सी फवार भी उसके लिए काफी हो जाए, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। तो यहां पर जो है आप देखें कि जो बात कही जा रही है वो क्या है कि जोर की बारिश से मुराद वो खैरात है जो इंतहाई जज्बा खैर के साथ और कमाल दर्जे की जो है वो नेक नियति के साथ जो है वो की जाए। तो और अगर हल्की सी फुहार से मुराद क्या है कि ऐसी खैरात जिसके अंदर जज्बा खैर की शिद्दत ना हो, जज्बा खैर तो था पर थोड़ा था, नियत इखलास थी तो सही पर कम थी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि थोड़ी हो तो दुगना फल आए, और अगर ज्यादा हो तो दुगना फल आए, और अगर थोड़ी हो तो भी काफी हो जाए। यानी असल चीज क्या है कि नियत होनी चाहिए ठीक, ताकि अल्लाह ताला जो है उसको कई गुना जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है ना वो वापिस करे। तो यहां हमने देखा दो मिसालें देखी, एक ऐसे शख्स की जो रियाकारी के लिए इंफाक करता है, और दूसरी ऐसे शख्स की मिसाल हमने देखी जो अल्लाह की राह में खर्च करता है लेकिन रजाए इलाही के लिए करता है, वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके इंफाक का उसको जो है वो अजर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर ये बात बताते हैं कि अब बारिश जब आएगी तो उसका माल बर्बाद नहीं होगा, जैसे पहले शख्स जो रियाकार है उस पर जब बारिश आई तो माल बर्बाद हो गया ना, कुछ भी ना मिला, सब कुछ बह गया, दाना भी और मट्टी भी, क्योंकि नियत ही नहीं थी अंदर। इस शख्स पर क्या है कि बारिश जब आई तो क्या है कि उसको दुगना फल दे दिया, बारिश ना भी हो तो हल्की सी फवार भी और आबो हवा की खूबी की वजह से उसको जो है ना वो कफायत हो गई, यानी उसको जो है वो अल्लाह ताला ने कई गुना जो है वो उसका अजर दिया। तो यहां पर जो अहम चीज है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो क्या है कि जब माल खर्च किया जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो रब की रजा के लिए खर्च किया जाए। और हमें कुरान में जगह जगह ऐसी आयात जो है वो मिलती हैं जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि अल्लाह को वो माल ज्यादा पसंद है कि जब खर्च किया जाए, जिस पर भी खर्च किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका मकसद क्या हो, अल्लाह की रजा हो। और हमें सूरत दहर में भी ऐसी आयतें जो है वो मिलती हैं जिसमें अल्लाह ताला नेक लोगों की खूबी बयान करते हैं और फिर ये बात बताते हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो उनके खर्च की मिसाल कैसी है, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا। सूरत दहर की आयत नंबर 8 और 9 है कि वो जो खाना खिलाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं, वो कि वो उस खाने से खुद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने के बावजूद उनको जरूरत होती है, लेकिन वो मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को अल्लाह की मोहब्बत में खिला देते हैं। और जब खिलाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम तुम्हें खिला रहे हैं लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तुमसे कोई बदला नहीं चाहते। ला जजा वला शुकूरा, ला नुरीदु मिनकुम जजा वला शुकूरा, कि ना बदला चाहते हैं और ना ही कोई शुक्रिया चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला इनको बहुत नवाजेगा और इनको इनकी इस नेकी का जो है वो बहुत बदला जो है वो अता करेगा। तो इससे हमारी फिर क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कुछ भी काम करें, छोटा करें बड़ा करें, कुछ भी पैसे खर्च करें, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही नियत होनी चाहिए, और वो नियत क्या है कि रब की रजा, अल्लाह ताला को राजी करना। आप देखिए बार बार एक तरफ अहले ईमान को मुखातिब किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको उनको ये तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो कुछ भी तुम खर्च करो तो तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी नीयत जो है वो ठीक होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि जो चीज पसंद होती उसे अल्लाह की राह में दे देते। एक दफा हज के सफर पे जा रहे थे और जिस ऊंटनी पे जा रहे थे ना, वो ऊंटनी की उनको चाल बड़ी पसंद आई और उसे उतर गए और अपने गुलाम नाफे से कहा इसे कुर्बानी के जानवरों में दाखिल कर लो। ऊंटनी और उसकी चाल वो तो उन्हीं को पता है जो जिनके पास ये जानवर थे और जो उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे अब यहाँ तो लोगों को गाड़ी और उसकी ग्रेस और उसकी स्पीड का पता है ना, कि इसीलिए वो कहते हैं ना, औरत कहती है शौहर मेरा गाड़ी, मेरा शौहर है पर गाड़ी उसको मुझसे ज्यादा पसंद अजीज है। एक शौहर कहने औरत कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है लेकिन ना वो मुझे अपनी गाड़ी नहीं कभी देता। दूसरा दूसरी कहने लगी मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है पर अपने कंप्यूटर पे नहीं बैठने देता। तो क्या होता है कि जिस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं ये कोई दूसरा इसको इस्तेमाल ना करे, दूसरा हैंड जो है ना उसको उससे यूज नहीं करेगा, मिस यूज, और उससे वो चीज खराब हो जाती है, मेरे काम की भी नहीं रहती। हर एक की अपनी एक परफेक्शन, सफाई की आदत और तरीका है ना, लेकिन ये कि जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर क्या करता है कि जो उसको चीज पसंद होती है तो उसको फिर अल्लाह की राह में दे देता है और अल्लाह की रजा के लिए देता है। सबसे अहम जो अहम बात है वो क्या है कि जब अल्लाह के रास्ते में दिया जाए तो एक तो वो अच्छी चीज दी जाए और दूसरा ये है कि उसको अच्छे तरीके से दिया जाए। मुझे महमूद गजनवी के मैं हालात जिंदगी एक दफा पढ़ रही थी तो बड़ी मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि उन्होंने जो है वो कहते हैं कि वो पब्लिक के लिए बहुत से रफायामा के काम करते थे ना, कुएं खुदवा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, मुल्क के अंदर हॉस्पिटल तामीर किए जा रहे हैं, कारखाने मुख्तलिफ, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी चीज का नाम अपने नाम पर नहीं रखा। वो अपने सिपाहियों के, अपने फौजियों के, अपने जो नीचे लोग थे ना उनके नाम पर उन चीजों के नाम रखते थे, अपने नाम पर नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि काम बेशक कोई और करे, नाम मेरा होना चाहिए। काम तुम करके लाइयो, मुझे दे दो, मैं जरा आगे ले जाऊं, है ना। कुछ बहुत से अम्मे ऐसे होते हैं ना कि लाई तुम वो चीज, बेशक तुम्हारी है, पेश मैं कर दूं आगे। तो कौन बताएगा कौन किसकी थी क्या था। थोड़ी देर के लिए मुझे तो यानी मैं उसके निगाहों में मुझे एक शाबाश और एक सताइश और सिला जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो फिर आप सोच लें कि इन्फाक भी करना है और किस तरह करना है और किस तरह का अल्लाह को इन्फाक जो है वो पसंद है। साथ ही फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, तुम जो कुछ भी करते हो सब अल्लाह की नजर में है। बड़ी खूबसूरत है ये आयत। और इसमें एक तरफ जो है अल्लाह ताला जो लोग भी खर्च करते हैं उनको तसल्ली देते हैं, उनको तस्कीन देते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की रजा के लिए, अपने नफ्स की तरबियत के लिए जब खर्च करते हैं, दुनिया उनको शाबाश ना भी दे, वाह वाह ना भी हो, गले में फूलों के हार नहीं भी पड़े, अखबारों में तस्वीरें ना भी आए, कुछ भी ना हो, लेकिन ये कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह जानता है तुमने क्या किया, अपने किस तरह पेट को काटा, आपके बच्चे भूखे थे, आपको जरूरत थी, आपको मुश्किल थी, आपका दिल चाहता था, लेकिन आप जो हैं वो खैरात और सदका जो है वो करते हैं और किस तरह करते हैं। बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि जो यहाँ रहती हैं कहती हैं कि हमारे जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में, वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगी कि जब भी हम या कोई आता है जाता है या कोई भी बात होती है तो आता है कि उनके हालात अच्छे नहीं, उनको मुश्किल है, तो फिर हम अपने जो हमारी जो पॉकेट मनी होती है या जो हमारा जेब खर्च मंथली होता है उसमें से काट कर हम उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं, और वो वहां पे जो है ना वो ऐसे आसाइशी क्या कहते हैं अय्याशी करते हैं जैसे कि दरख्तों पर डॉलर लगते हैं, कमाई करके जो है वो नहीं आते, क्योंकि वो खुद कमाई नहीं करते तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता। वो ये समझते हैं कि वहां के अमेरिका में या कनाडा में या लंदन में बरतानिया में बाहर के ममालिक में लोग जो है बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी जो है वो बसर करते हैं, तो उनकी जो जरूरियात या उनकी डिमांड जो है वो इस तरह की होती हैं कि हम बाहर बाजू का जाना भी चाहते हैं मिलने के लिए रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, फिर नहीं चाहते क्योंकि वो लिस्ट हम पूरी नहीं कर पाते। तो असल बात यह है कि, और फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर इस आपके तो ये हालात है, आपसे तो हम ही अच्छे हैं, जो यानी ऐसे लगता है आप तो किसी गांव से उठकर आ गए हैं ना। तो इस तरह की बहुत सी बातें आपको भी हो सकता है सुनने को मिलती हो, लेकिन असल बात यह है कि आप इस बातों पे परेशान ना हो, क्योंकि अगर कोई मांग रहा है और जरूरतमंद है और वो आपके सामने अपना दस दराज करता है, सवाल करता है, और हाँ आप अपना अगर पेट काट कर उसको देते हैं तो अल्लाह के यहाँ उसका अजर है, दुनिया तो उसका अजर और क्रेडिट जो है वो नहीं दिया करती। और दिल छोटा भी नहीं करना चाहिए, और जो नेकी कर रहे हैं उसको उसे छोड़ भी नहीं देना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, अयवद्दु अहदुकुम अन तकुना लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अलनहार। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म से के फलों से लदा हुआ, यानी लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, हर तरह के उसके अंदर फल हैं, और फिर हो क्या, वासाबहुल किबारु व लहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, फिर एक तेज भगोले की जद में आकर झुलस जाए, तेज भगोला आया और फिर उसको जला कर रख दिया। और उस वक्त हाल क्या था कि उसके बच्चे थे छोटे छोटे और वो खुद बूढ़ा हो चुका था, वासाबहुल किबारु व लहू ज़ुर्रियतुन दुआफा فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ। तो जब वो तेज भगोला आया तो उसको जला कर रख दिया। कज़ालिका युबय्यिनु اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने बयान करता है शायद कि तुम गौर व फिक्र से काम लो। कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने सहाबा से इस आयत का मतलब पूछा। ये जो आयत है 266, इसका मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने सहाबा से पूछा। सहाबा ने कहा वल्लाहु आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने गुस्से से कहा ये क्या बात हुई, साफ कहो कि हमें मालूम है या नहीं मालूम। इस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरे दिल में एक बात आई है, आपने कहा भतीजे बयान करो और अपने आप को छोटा ना समझो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने कहने लगे अल्लाह ने ये अमल की मिसाल एक मालदार शख्स की बयान की है, जो अल्लाह की, यानी अब वो बताते हैं कि ये अमल की मिसाल बयान की है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो। हजरत उमर रजी अल्लाह फिर पूछते हैं कौन सा अमल, अब वो जवाब नहीं दे पाते, तो हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की अताअत में अमल करता रहता है, फिर अल्लाह शैतान को इस पर गालिब कर देता है, वो गुनाहों में मसरूफ हो जाता है और इसके नेक अमाल सब के सब फना हो जाते हैं। ये बुखारी की रवायत है। अब आप देखें, आप मिसाल पर गौर करें कि एक ऐसा शख्स जिसका बाग बड़ा खूबसूरत है, जन्नतुन, हरा भरा बाग है, खजूरें भी हैं, अंगूर भी हैं और उसके नीचे नहरें भी बह रही हैं, तो ये जो है वो अरब के तस्वुर के मुताबिक एक अच्छे खूबसूरत बाग की मिसाल है, उसकी मंजरकशी है, और इतना अच्छा बाग है कि किनारे किनारे खजूरों के दरख्त हैं, बीच में अंगूरों की बेलें हैं, मौके की मुनासिबत से किसान ने जगह जगह जो है वो काश्तकारी भी की हुई है, और बाग बुलंदी पर है और नीचे नहरें बह रही हैं। अब वो बाग जिसके अंदर पानी भी दौड़ रहा है, नहर बह रही है, नालियां पानी की उसके अंदर जा रही हैं, तो कितना खूबसूरत बाग है। ऐसे बाग जो होते हैं इनके अंदर फल भी बहुत अच्छा मिलता है, और ये जो आंधी तूफान होते हैं इससे भी काफी हद तक महफूज रहते हैं, और रौनक भी बाग के अंदर बहुत होती है। तो और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं कि नखील है और अनाब है, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, हर तरह का फल उसके अंदर पाया जाता है। जिससे क्या पता चलता है कि कोई एक दो फल नहीं है, जैसे यहाँ पे भी आप देखें बाज लोगों को काश्तकारी का बड़ा शौक है, और कोई सिर्फ पुदीना ही लगा लेता है, वही सब्जा बड़ा अच्छा लगता है, कोई धनिया लगा लेता है, कोई टमाटर लगाए हुए हैं, किसी ने थोड़े फूल लगाए हैं, किसी ने थोड़े फल लगाए हैं, और बाज जगह ऐसी हैं कि बड़ा खूबसूरत पूरा का पूरा जो है ना वो बाग है, जिसमें सब कुछ है। और बहुत अच्छा लगता है कि इंसान जाता है, तबीयत हमारी खुश होती है, शादाब होती है, आबाद होती है, इंसान को फ्रेशनेस मिलती है, और नजर ठीक होती है, और दिल के अंदर जो भी गम परेशानी है इंसान थोड़ी देर के लिए उन तफक्कुरात को भूल जाता है। तो इस शख्स का जो बाग था, जब इतने जोबन पर था, इतना खूबसूरत था, इतने अच्छे फल थे उसके अंदर, और फिर वो वक्त था बुढ़ापे का, वसा बहुल किबारू, अब वो बूढ़ा हो गया, यानी गोया के जब तक बाग लगाया फल आ रहा था तो अच्छा था, नेकी कर रहा था, अच्छी कर रहा था, लेकिन फिर नेकी करते करते वो बुढ़ापे को पहुंचा, बूढ़ा होने लगा, और बच्चे थे उसके छोटे छोटे। बाज का तो ऐसा भी होता है ना कि बाज किसी की शादी देर से हुई, बाग की रखवाली करते करते देर से शादी की, कोई पढ़ाई करते हुए देर से करता है, कोई जॉब करते हुए देर से करता है कि पहले इसको मैं सेट कर लूं फिर मैं ये काम करूंगा। तो बहरहाल जो भी रीजन थी, जब बाग जोबन पर पहुंचा वो बूढ़ा होने लगा और बच्चे थे छोटे छोटे, और एन उस वक्त क्या हुआ कि एक ऐसी आंधी आई, ऐसा बगोला आया आंधी का कि जिसके अंदर आग थी, यानी गर्म हवा, यानी लू, और उस लू ने क्या किया कि फह तरकत, उस बाग को जला कर रख दिया। और अब जब बाग जल गया तो अब वो क्या करे, क्योंकि बुढ़ापे में तो इंसान ये चाहता है ना कि जिंदगी भर कमाई की है, अब उसको बैठ कर खाए। जैसे यहाँ पे भी कौन सी उम्र में पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, 65 है ना, तो बुढ़ापे में सब कुछ फ्री है, मेडिकल है, घर भी है, नौकर चाकर बहुत जो है वो अच्छा जैसे इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। तो अब उसका बेचारे का क्या हुआ कि उस मौके पर आकर उसका बाग ही जल गया। अब बच्चे ऐसे मौके में बाग जल जाए तो बच्चे बड़े हों, कमाई कर रहे हों, तो साथ में जो है ना वो हेल्पिंग हैंड, शोल्डर के तौर पर मजबूत हाथ बनकर काम आते हैं। अब बच्चे भी छोटे हैं, कमाई भी सारी जाया हो गई। तो अब सोचें कि वो शख्स जो है वो कैसा है, ऐसा बुढ़ा जो बड़ा ही हसरतनाक हो, जिसकी उम्र भर की कमाई, जिसकी जिंदगी का सहारा एक बाग था, और ऐन बुढ़ापे में उस वक्त जल गया, ना खुद नया बाग लगा सकता है कि बूढ़ा हो गया, ना उसकी औलाद इस काबिल है कि उसकी मदद कर सके। तो आप सोचें कि फिर ऐसे शख्स को जो है वो क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। तो गोया के ऐसा शख्स जो दुनिया में जब अमल कर रहा था तो कुछ नेकियां भी कर रहा था, अल्लाह के लिए भी कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक शैतान जब उस पर गालिब आ गया, दिखावा करना शुरू कर दिया, या ये कि गलत रास्तों पे उसको खर्च करना शुरू कर दिया, तो अब क्या है कि सारी उम्र की कमाई जो थी, सारी कुव्वतें और कोशिशें जो हैं वो जाया हो गई। कोशिश भी की और दुनिया के लिए दिखाने के लिए, तो भी सारी जाया हो गई, है ना। तो ये है कि आफ्ताब जिंदगी के गुरूब होने के साथ साथ सारी कमाई जो है उसकी वो जाया हो गई। तो ये मिसाल जो है ये इबरत दिलाती है, इंसान को ये एहसास दिलाती है। पहली चीज तो ये कि रियाकारी से नेकी ना की जाए, उसकी मिसाल भी इस बुड्ढे की सी है, दिखावे के लिए ना की जाए, वो जाया हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो भी नेकी की जाए तो उस पे एहसान ना जताया जाए, दुख ना दिए जाए, वो भी जाया हो जाएगी, है ना। तीसरी चीज क्या कि जो भी नेकी की जाए उसके अंदर इखलास होना चाहिए। तो गोया के ये जो मिसाल है ना, इसने पूरे रुकू की जो अहम बातें थी, वो तमाम जो शराइत थी, वो दोबारा इसके अंदर समेट कर रख दी है। तो पहली बात ये कि माल हलाल होना चाहिए जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। फिर नंबर दो, सुन्नत के तरीके के मुताबिक खर्च किया जाए। तीसरी चीज ये है कि सही जगह पे खर्च किया जाए। चौथी चीज ये है खैरात देकर एहसान ना जताया जाए। पांचवी चीज ये है कि कोई ऐसा मामला ना किया जाए कि जिस पर खर्च किया है उसकी हकारत हो, उसका दिल छोटा हो। छठी चीज ये है कि जो कुछ भी खर्च किया जाए उसको इखलासे नीयत के साथ खर्च किया जाए। अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए तो ही जो है वो फायदा है, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि जब इंसान सोचे कि मुझे वहां पे अजर मिलेगा तो वहां पे जो है वो उसको कुछ भी ना मिले, इस बूढ़े की तरह के साह तरकत कि उसका सारा कुछ जो है वो जल कर रह गया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी मिसालें बयान करता है, अपनी निशानियां बयान करता है, शायद कि तुम जो है वो गौर व फिक्र करो। तो अब यहां पर जो अहम बात है वो क्या है कि खैरात करने के साथ साथ उसकी पूरी पूरी हिफाजत करनी चाहिए, कोई नेक अमल करके फिर उसको जाया नहीं कर देना चाहिए। और हमारे हमारी बड़ी बदकिस्मती है ये कि अव्वल तो खैरात करने पर दिल राजी नहीं होता, दिल तंग पड़ने लगता है और हमें लगता है कि खैरात करेंगे तो शायद घट जाएगा, हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कई गुना बढ़ेगा। दूसरी बात जो है, हम जब खैरात करते हैं तो अपने रवैयों से उसको जाया कर देते हैं, कभी एहसान जताया, कभी दुख दे दिया, कभी दुनिया को बता दिया, रियाकारी कर दी, दिखावा कर दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ लोगों, मेरी इन बातों पर, मेरी इन मिसालों पर गौर व फिक्र करो ताकि जो है जो भी तुमने की करो तुम्हें उसका जो है वो अजर मिले, दुनिया में भी तुम्हें एक अच्छे ईमान वाले और मुसलमान बनकर जिए और आखरत में भी अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां जो है वो उनसे नवाजे। और वहां पे तो एक एक नेकी का इंसान मोहताज होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बारे में आता है ना कि वो उन्होंने गुलाम खरीद कर बहुत से आजाद किए, तो जब एक दफा उनके बूढ़े बाप कहने लगे कि अबू बकर तुम जो गुलाम खरीद कर आजाद करते हो तो कमजोर कमजोर ना किया करो, बूढ़े कमजोर नहीं बल्कि मजबूत जवान जो गुलाम है ना उनको आजाद किया करो, जरूरत पड़े तो तुम्हारे काम भी आएंगे जंग में मुश्किल में। किसी वक्त तो कहने लगे कि नहीं ऐ मेरे अब्बाजान, मैं तो रब की रजा चाहता हूं। कि बाजूकात इसलिए हम करते हैं कि हमें उससे क्या फायदा मिलेगा ना, किस वक्त कहां मुझसे मुझे वो फायदा होगा, अगर राइट दी तो मुझे क्या मिलेगा, अगर किसी को सिखा दिया कुछ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर किसी को कुछ बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, और अगर किसी की रहनुमाई कर दी तो मुझे क्या मिलेगा। हर चीज पर हम दुनिया के लिहाज से हिसाब किताब करते रहते हैं कि फायदा कहां पे होगा, तो असल चीज क्या है कि दुनियादार बनने की बजाय अल्लाह पर और आखरत पर ईमान होना चाहिए और जो कुछ करें रब की रजा के लिए करें और इस बात से बेनियाज होकर करें कि आखरत में, दुनिया में मुझे इसका क्या मिलेगा, बल्कि ये फिक्र होनी चाहिए कि आखरत में मुझे अल्लाह ताला इसका क्या अजर देंगे ना। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह को किसने आजाद किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और फिर एक दौर आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो बहुत से सहाबा जो थे वो फतुहात के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए मदीना से जाने लगे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का जमाना था और बिलाल हबशी रजी अल्लाह का दिल नहीं लगता था वहां पे ना, रसूलुल्लाह के बाद उनका दिल नहीं लगता था, वो वहां से चल दिए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उनको जो है वो चाहा कि वो ना जाए ना, तो कहा कि क्या तुमने मुझे इसलिए आजाद किया था कि तुम मुझे अपने गुलाम बना लो कि मैं मदीना में रहूं? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह रोने लगे ना कि वो ये चाहते थे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से चले गए तो अल्लाह के नबी के जो साथी हैं ना वो मेरे पास रहे ना, तो आप उनसे मोहब्बत करते थे इसलिए आप चाहते थे कि आप मुझे छोड़कर ना जाएं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे करीब रहे ना। तो कहा कि खुदा की कसम मैं इसलिए नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप का मेरे साथ साथ रहे ना। तो ये सारी बातें हैं जो बताती हैं कि छोटे छोटे मामलात में, छोटी छोटी चीजों में इंसान अपनी नियतों का जायजा लेता जाता है कि मैं ये काम जो है वो क्यों कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैहि।